नमस्कार शिक्षार्थियों, आज माध्यमिक स्तर के संस्कृत के पाठ विरह कातरम तपोवनम इसको अधिकृत करके इसके आधार पर आज हमारी चर्चा है। शिक्षार्थियों, जैसा कि पाठ का जो नाम है विरह कातरम तपोवनम, यहाँ इस पाठ के माध्यम से भी महर्षि कण्व के तपोवन में जो पली शकुंतला है, तो शकुंतला को पतिग्रह जाना है, उसका जो समय है उस समय वो पति ग्रह जाने का है, और उस समय उसकी जो सहेलियां हैं और ऋषि का जो माँ थी तापसी गौतमी वो हैं, ऋषि कण्व हैं, ये सभी के सभी अत्यंत दुखी होते हैं। यहाँ इस पाठ के माध्यम से यह भी बतलाया गया है कि केवल ऋषि या सहेलियां या तापसी गौतमी महर्षि कण्व यही दुखी नहीं होते हैं, उनका वियोग जो है वो कष्टप्रद नहीं होता है अपितु, और इन सब का बहुत ही सुंदर जो चित्रण है इस अभिजान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने अपने इस प्रसिद्ध नाटक में किया है। इसी नाटक का अभिजान शाकुंतलम जो नाटक है उसी का संक्षिप्त और सरलीकृत जो रूप है वो यहाँ इस पाठ में संकलित किया गया है। मित्रों, प्राचीन काल में पशु पक्षी वनस्पति जगत ये सभी जो है परिवार के अंग होते थे, क्योंकि हमारी जो परंपरा है उसमें ऐसा प्रथम से ही अति प्राचीन से ही ऐसा आता है कि हम प्रकृति के हमेशा सर्वदा प्रकृति के पास में रहे हैं। हमारा रहन सहन, हमारा कर्तव्य, हमारे कार्य करने का तरीका, हमारा सोचना विचार करने के तरीके, हमारा पठन पाठन सब प्रकृति के साथ साथ चलता रहा है, अर्थात उसमें प्रकृति का भी उतना ही भाग है। हमारे बुद्धि और विवेक को भी अगर निर्णय करना है कोई स्थिति का, तो भी उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति का भाग रहा है, और इस पाठ के माध्यम से यही सब दर्शाया गया है कि अपना हर्ष और शोक परिवार के एक सदस्य की भांति ये जो प्रकृति थी, जो वनस्पति थी, वो भी व्यक्त कर रही है, और इसका सजीव उदाहरण इस पाठ के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। शिक्षार्थियों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि प्राचीन काल में जो नाटक था, नाटक विधा, संस्कृत में तीन तरह की विधाएं हैं, एक गद्यमयी विधा है, एक पद्यमयी विधा है, और एक चंपू काव्य जिसको बोलते हैं, तो नाटक इसी में आता है। नाटक जो है वो एक गद्य पद्यमयी विधा है, और प्राचीन समय में ये एक आनंद का विषय था, मनोरंजन के माध्यम होते थे, परंतु ये जो रंगमंच के माध्यम से नाटकों का जो चित्रण होता था वो केवल आपके प्रशंसा के लिए या केवल और केवल आपकी खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए नहीं होता था, अपितु वहां इन नाटकों के माध्यम से कोई न कोई एक समस्या, एक विषय को लेकर के और उस तरह के ज्ञान का भी प्रचार प्रसार होता था। क्या हमारे लिए करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या पालनीय है, क्या नहीं पालन करने योग्य है, किन किन गुणों का हमें आधान करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए, चाहे वो व्यवहारिक शिक्षा है, चाहे वो बौद्धिक ज्ञान है, इन सब के विषय में इन नाटकों के माध्यम से बतलाया जाता था, अर्थात नाटकों का जो मंचन था उसका एक विशेष और एक प्रसिद्ध ध्येय था कि हमें इन इन विषयों को सोचना है, इन इन विषयों को विचार करना है और इन इन विषयों की को का पालन करना है। तो इस पाठ के माध्यम से भी जब पाठ प्रारंभ होता है तो नाटकों में ऐसा होता था कि वो पात्र होते हैं, कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो इस पाठ में भी सखियां हैं, तापसी गौतमी है, शकुंतला है, और उसके अतिरिक्त महर्षि कण्व हैं, तो ये इनके विषय, इनके आपस में जो हुआ वार्तालाप है जब शकुंतला पतिग्रह के लिए प्रस्थान करती है, उस समय आपस में उनके मध्य में परस्पर कुछ वार्तालाप होता है, उसी को इस पाठ के माध्यम से दर्शाया गया है। यहां रंगमंच करते हुए, रंगमंच पर इसकी अभिव्यक्ति करते हुए आता है कि ततः प्रविशति शकुंतला सख्यौ गौतमी च, उस समय प्रवेश करते हैं शकुंतला, उसकी दो सखियां और तापसी गौतमी। शिक्षार्थियों, संस्कृत में च जो है ये अव्यय है, और अव्यय का जब जिन जिन दो पदों के बीच उसका अर्थ का ग्रहण हमें करना है, आधान करना है अर्थ का, उनके बाद उसका प्रयोग होता है। जैसे राम राम च, जैसे राम लक्ष्मण लक्ष्मणौ च, तो यहाँ राम और लक्ष्मण के बाद च का प्रयोग होता है। और उसका अर्थ जब हम करेंगे हिंदी में, तो राम और लक्ष्मण अर्थात च का अर्थ और है, उसका अर्थ जो है अंतिम शब्द से, जिस शब्द के बाद उसका प्रयोग हुआ है उससे पूर्व उसका, उसके अर्थ का आधान करते हैं, रखते हैं। जैसे यहाँ आया है सख्यौ गौतमी च, तो सखियां और गौतमी, ऐसे यद्यपि गौतमी च, गौतमी के बाद च का प्रयोग हुआ है, परंतु उसका अर्थ जो है वो है सखियां और गौतमी। और जैसा कि मैंने कहा कि च अव्यय है, अब प्रश्न समुपस्थित होता है कि अव्यय है क्या, अव्यय किसे कहते हैं? तो इसके लिए संस्कृत में एक उक्ति आती है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अर्थात जो तीनों लिंगों में समान रहे, तीनों वचनों में समान रहे, सदृशम त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च सर्वेषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में भी जो समान रहे, वचनेषु अर्थात सभी वचनों में, संस्कृत में तीन वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे तीन लिंग हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो यह जो अव्यय जो होता है वो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में, सात विभक्तियां होती हैं उनमें, उन सभी विभक्तियों में समान रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। न वेति, न वेयम, वेयम एति, जो व्यय को प्राप्त नहीं होता है। शब्द का व्यय क्या होगा? शब्द का व्यय करना, शब्द का व्यय करना यही है कि शब्द का परिवर्तन होना, अर्थात उसमें कोई चेंज नहीं आता है, कोई घटना या बढ़ना नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे कृष्ण सर्प, जब हम यहाँ कृष्ण सर्प, उदाहरण के लिए यही, इसी को, चय को हम ले सकते हैं। हाँ, तो जैसे चय है, तो जब चय का प्रयोग है तो वो यहाँ शकुंतला सख्यौ गौतमी चय, ऐसे बहुवचनांत पदों के साथ उसका प्रयोग हुआ है तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये चय जहां भी प्रयोग होगा, जिस भी विभक्ति में, जिस भी वचन में, जिस भी परिस्थिति में, वहां चय इस तरह ही प्रयोग होगा। अन्य शब्द मान लीजिए कृष्ण शब्द है, कहीं कृष्ण है प्रयोग होगा, कहीं कृष्णौ प्रयोग होगा, कहीं कृष्णा प्रयोग होगा, ऐसे ही सर्प सर्पौ सर्पाह सर्पेन सर्पाभ्याम सर्पाई सर्पाय सर्पेभ्य सर्पस्य सर्पे, ऐसे अनेक रूपों में उसका प्रयोग होगा, अनेक वचनों में प्रयोग होगा, ऐसे ही लिंगों में भी प्रयोग परिवर्तित होता रहता है। जैसे कृष्णम कृष्ण कृष्णाणी, तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो अव्यय वो वह है जो परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ आया है ततः प्रविशति शकुंतला सख्यौ गौतमी च, सख्यौ शकुंतलायाः पुष्पादिभिः अंगारादिभिः अभिनयेन श्रृंगारं कुरुतः, जो सखियां थी वो शकुंतला का पुष्प आदि से और जो भी अन्योन्य जो श्रृंगार के जो साधन हैं उनसे श्रृंगार करने का अभिनय करती हैं। पुनः सखियां जो है वो शकुंतला को कहती हैं, हला शकुंतले, हे प्रिय शकुंतले, अवसित मंडना असी भवती, अवसित मंडना असी, कि आप जो है अवसित मंडना, अवसित मंडना का अर्थ जो है वो है कि जिसने श्रृंगार पूरा कर लिया है, जिसका श्रृंगार पूरा हो गया है, ऐसी आप हो। तो यहां कहा गया कि अवसित मंडना असी, परिधत्स्व क्षोम युगलम। तो यहाँ जो पद आया है अवसित मंडना, तो इस पद का व्याख्या करते हुए यहाँ हम कह सकते हैं कि अब शकुंतला जिसका श्रृंगार क्रिया समाप्त हो चुकी है, अर्थात श्रृंगार समाप्त क्रिया वाली ऐसा, हाँ, तो उसको जो है ऐसी जो शकुंतला है उसको वो कहते हैं कि परिधत्स्व क्षोम युगलम, कि परिधत्स्व अर्थात धारण कर लो, क्षोम युगलम अर्थात एक विशेष प्रकार का सिल्क का जो वस्त्र होता था उसको क्षोम युगल कहते थे। शकुंतला उत्थाय परिधत्ते, और शकुंतला उठकर उसको धारण करती है। ततः प्रविशति कश्यपः, उसके बाद कश्यप जो है वो प्रवेश करते हैं। जब कश्यप प्रवेश करते हैं तो गौतमी जो तापसी गौतमी जो होती हैं वो शकुंतला को कहती हैं, जाते एषः आनंद परिवाहिन्या दृष्ट्या वीक्षमाणः गुरुः उपस्थितः। हाँ, कालिदास की ये विशेषता है कि इतने मधुर और मृदु शब्दों में वो विषय की विवेचना करते हैं कि उसका जो श्रोता है जो अध्येता है वो स्वयं जो है उनके साथ अपने आप को जोड़कर चलता है, और उसी से उनके नाटकों को जब हम पढ़ते हैं, जब हम उसका स्मरण करते हैं, तब जब हम उनके नाटकों का वाचन करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। एष आनंद परिवाहिन्या दृष्ट्या, ये आनंद परिवाहिनी दृष्टि से अर्थात आनंद की वर्षा करती हुई दृष्टि से अर्थात नेत्रों से, वीक्षमाणः अर्थात देखता हुआ, हाँ देखते हुए गुरु उपस्थितः, कि गुरु उपस्थित हो गए हैं। आचारम तावत प्रतिप्रद्यश्व, कि आप आचार की पालना करो, व्यवहार की पालना करो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है, कवि कहता है कि आप व्यवहार की पालना करो। व्यवहार एक गुरु के समुपस्थित होने पर, माता पिता के समुपस्थित होने पर, पुत्र या पुत्री का जो व्यवहार है अर्थात उनके प्रति आदर भाव प्रकट करना, उनका वंदना करना, उनको नमस्ते करना, ये हमारी संस्कृति का एक पार्ट रहा है, एक भाग रहा है। तो इसीलिए जो गौतमी जो है वो कहती हैं, क्योंकि पति गृह जाना है शकुंतला को, उनको कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा है कि कहीं ऐसी परिस्थिति में वो विस्मृत ना कर जाए, विस्मरण ना कर जाए। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने तापसी गौतमी ने उनको शकुंतला को कहा, यद्यपि शकुंतला को ये सब विषय पता है, ज्ञान है उसको, लेकिन पुनरपि यही मैं कह रहा था कि कालिदास किस तरह से परिस्थितियों का वर्णन करते हैं कि उस तरह की जब परिस्थिति होती है तो उस परिस्थिति में विस्मरण होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए जो माँ जो होती है वो अपने जो पुत्री है उसको बीच बीच में मध्य मध्य में उसको स्मरण कराती है, तो उसी माँ के माँ की जो कर्तव्य है, माँ का जो कर्तव्य है उसी का निर्वहन करते हुए तापसी गौतमी कहती हैं कि आपके गुरु उपस्थित हुए हैं। आचारम तावत प्रतिपद्यश्व, कि आचार व्यवहार का पालन करो। अब शकुंतला जो है वो पति गृह जा रही है तो वो सलज्जम अर्थात वो थोड़ी लज्जा, थोड़ा शर्म महसूस करती है, थोड़ी लज्जा अनुभव करती है, और बोलती तात वंदे, वो अपने तात जो हैं उनको उनको उनकी वंदना करती है, उनको प्रणाम निवेदन करती है। कन्वे कहते हैं, वत्से भरतुहु बहु मता भव सम्राजम श्रुतम आपनु ही। अब वो आशीर्वाद देते हैं, अब बड़ों का जो आशीर्वाद है, अब आशीर्वाद के कन्वे महर्षि कन्वे किस तरह से शकुंतला को कहते हैं, तो वो कहते हैं कि भरतु बहु मता भव, कि पति के लिए आप बहुमता होमे, बहुमता अर्थात आप सम्मानिता, कि आप सम्मानित होएं, आपका आप पति गृह जा रही हैं, पति के घर में आपका सम्मान रहे, सम्मान को प्राप्त करें आप। और उसके बाद कहते हैं सम्राजम श्रुतम आपनो ही, और आप सम्राट पुत्र को प्राप्त करें। कैसे पुत्र को प्राप्त करें? सम्राट पुत्र को प्राप्त करें। अब शिक्षार्थियों, मैं आपको एक और इसी विषय में, जैसे हमने अभी चर्चा की कि आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद भी भारतीय परंपरा जो संस्कृति में आशीर्वाद का जो महत्व है वो यह है कि आशीर्वाद का अर्थ यह नहीं होता है कि जो माता पिता या गुरुजनों या बड़े बड़ों ने या सगे संबंधियों ने या कोई भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ विद्वान जनों ने या वयोवृद्ध लोगों ने हमें कोई आशीर्वाद दिया, तो उसका अर्थ यह नहीं होता है कि वो उनने आशीर्वाद दिया और हमारे ऊपर कृपा हो गई। आशीर्वाद का अर्थ होता है कि जो आशीर्वाद देने वाला है वो आपके अंदर उस ये कैपेबिलिटी, आपके अंदर ये योग्यता पाता है कि आप उस विषय को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जब महर्षि कण्व शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं तो वो उनके मन में यह है कि शकुंतला में वो योग्यता है कि वो अपने पति गृह में, अपने पति के घर में सर्वदा सम्माननीय रहेगी, सम्माननीय रहेगी, उसको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसी योग्यता वो शकुंतला में समझते हैं। उसी तरह से वो जब यह कहते हैं सम्राजम श्रुतम आपनो ही, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप सम्राट पुत्र को प्राप्त हुए। यहाँ पुत्र का अर्थ संस्कृत में केवल मैं अपने शिक्षार्थियों के लिए कहना चाहता हूं और समाज में इस तरह की चर्चा परिचर्चा होती है, संस्कृत में पुत्र का अर्थ केवल पुत्र नहीं है, संस्कृत में पुत्र का अर्थ होता है संतान। पुत्र से हमें पुत्र या पुत्री ऐसे विभेद करके उसका अर्थ नहीं लेना है। हाँ, जहां भी संस्कृत में पुत्र शब्द इस तरह से आता है तो वहां वहां उसका अर्थ होता है संतान, संतति। तो इसीलिए सम्राजम श्रुतम आपनो ही, आप श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करें, ऐसा इसका अर्थ हमें करना पड़ेगा। तो इसी तरह से गौतमी, जो तापसी गौतमी हैं, वो बोलती हैं भगवान वरह खलु एष न आशी ही, कि हे भगवान, ये जो है इनको 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 वर नहीं चाहिए, केवल खलु एष न आशी ही, कि केवल वर नहीं चाहिए, कि आपका केवल आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। तो कण्व बोलते हैं कि वत्से इतः अग्निम प्रदीक्षिणी कुरुष्व एते वहन्यय दुरितम अपघ्नन्तः त्वाम पावयन्तु प्रतिष्ठस्व इदानीम। अब यहां प्रकृति की के विषय की विवेचना कालिदास ने की है कि वत्से, हे वत्स वत्सा, इतः अग्नि प्रदक्षिणी कुरुष्व, यहाँ अग्नि की प्रदक्षिणा कीजिए, हमारे यहाँ अग्नि जो है उसकी प्रदक्षिणा करना जो है वो पवित्र माना जाता था, क्योंकि अग्नि के लिए, अग्नि का जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, अग्नि का जो विषय है वो है कि अग्नि को कोई भी वस्तु अल्पमात्र में अगर उसको अग्नि को प्रदान किया जाए तो अग्नि उसको और विस्तृत रूप में हमें प्रदान करती है। हाँ, अग्नि अपने पास कुछ भी नहीं रखती है, इसलिए वेद में भी अग्नि के विषय में प्रथम सूक्त ही, ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है वो ही अग्नि सूक्त है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युविजम होतारम रत्न दहातमम, ऐसे वहां प्रथम जो सूक्त है वो अग्नि सूक्त ही है। और अग्नि जो है वो हमारे हमारे मनुष्य, हमारे समाज का, हमारे परिवार का, उसका एक अभिन्न अंग रहा है, आज भी है, पहले भी रहा है, और हमारे शरीर का भी एक अभिन्न अंग है अग्नि। जो शरीर में जो अग्नि है वो जैसे जठराग्नि है, तो ये भी एक शरीर का पार्ट है, एक शरीर का भाग है, और वो अवश्य भाग है, अर्थात तो उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। तो इसीलिए यहाँ कहा है इतः अग्निम प्रदक्षिणी कुरुस्व, कि अग्नि की प्रदक्षिणा करो। जब कोई व्यक्ति को वचन लेना होता था, प्रतिज्ञा करना होता था, तो भी अग्नि की प्रदक्षिणा करके लेते थे। एते वह्नय दुरितम अपघ्नन्तः त्वाम अपावयन्तु, यहाँ कहा है कि एते वह्नय, ये जो अग्नि है ये दुरितम अपघ्नन्तः, आपके जो दुरित हैं, अर्थात जो अच्छे विचार, अच्छा भाव, या आपके अंदर जो भी अवगुण या जो कमियां हैं, जो अश्रेष्ठताएं हैं, उनको अपघ्नन्तः अर्थात उनको दूर करते हुए, नष्ट करते हुए त्वाम अपावयन्तु, आपको पवित्र करें। प्रतिष्ठस्व इदानीम, अब आप प्रस्थान करो, चलो, अर्थात वो उनको प्रस्थान करने की अनुमति देते हैं। सदृष्टिक्षेपम क्वते शारंग रव मिश्रहा, जो महर्षि कण्व हैं वो अपने शिष्यों की तरफ इंगित करते हुए पूछते हैं क्वते शारंग रव मिश्रहा, कि शारंग रव और जो शिष्य हैं उनके लिए कहते हैं कि कहाँ हैं आप, तो ऋषि की जो ध्वनि है, जो वचन है, उसको सुनते ही शारंग रव और अन्य जो शिष्य हैं वो प्रवेश करते हैं। शिष्यः भगवान इमे स्मः, हे गुरुजी हम यहाँ हैं, इधर हैं, यहीं हैं। शारंग रव इत इतो भवति, शारंग रव जो है वो, क्योंकि शकुंतला को पतिगृह जाना है तो फिर वो जो शिष्य हैं वो उनको मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग दिखलाते हैं, ऐसे बोलते हैं इत इतो भवति, आप इधर से आइए, इधर से आइए। सर्वे परिक्रामन्ति, और सभी जो है परिक्रामन्ति अर्थात गमन प्रारंभ करते हैं। कण्व महर्षि कण्व बोलते हैं भो भो तपोवन तरवह या शकुंतला युष्मासु अपि तेषु जलम न पीतवती प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन पल्लवानी न आदत्तवती सा एव इयम पतिगृहम याति सर्वैः अनुज्ञायताम। यहाँ कण्व कहते हैं, अत्र महर्षि कण्व कथयति भो भो तपोवन तरवह, हे तपोवन के तरु वृक्षो, या शकुंतला युष्मासु अपि तेषु, अर्थात जो शकुंतला आप सभी के द्वारा जलम न पीतवती, युष्मासु अपि तेषु जलम न पीतवती, कि आपके द्वारा जब तक जल ग्रहण नहीं कर लिया जाता था, अर्थात जब तक वो वहां की जो वनस्पति थी, जहां वहां के जो वृक्ष थे, जो तरु थे, जो पादप थे, उनमें जब तक पानी उनको नहीं पिला देती थी, उनमें पानी नहीं डाल देती थी, तब तक शकुंतला जल ग्रहण नहीं करती थी, पानी नहीं पीती थी। इसीलिए यहाँ कहा है कि या शकुंतला युष्मासु अपि तेषु जलम न पीतवती, जब तक आपने जल ग्रहण नहीं किया है तब तक जो जल नहीं पीती थी, पानी नहीं ग्रहण करती थी, ऐसी जो शकुंतला है। प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन पल्लवानि न आदत्तवती, यद्यपि वो प्रिय मंडना थी, उनको आभूषण अर्थात अत्यंत प्रिय थे, श्रृंगार अत्यंत प्रिय था, पुनरपि भवताम स्नेहेन पल्लवानि न आदत्तवती, लेकिन आपके प्रति जो स्नेह था, जो प्यार था, जो आपके प्रति उनका स्नेह था, उसके कारण से पल्लवानि न आदत्तवती, वो आपके पत्ते तक भी नहीं लेती थी, तोड़ती नहीं थी। स एव इयम पति गृहम याति, वो आज पति के घर को जा रही है, सर्वेई अनुज्ञायताम, कि आप सब लोगों के द्वारा, आप सभी अर्थात प्रकृति के द्वारा भी, आश्रम वासियों के द्वारा भी, सबके द्वारा उसको सर्वेई ही अनुज्ञायताम, सबके द्वारा उसको अनुमति दी जाए। अब यहाँ इस कथन में हमें ज्ञात होता है कि किस तरह से प्रकृति के प्रति प्रेम भाव जो है वो शकुंतला का था, किस तरह से वो प्रेम भाव में वो बोल रही हैं। वो शकुंतला कहती है कि जो कण्व जो हैं वो कहते हैं कि युष्माशो पितेषु जलम न पीतवती, कि जो आपके नहीं पीते हुए, अर्थात जब तक आप जल ग्रहण नहीं करते थे तब तक वो पानी नहीं पीती थी, इसमें प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द ये दर्शाया गया है। इससे ज्ञात होता कि जो प्राचीन काल में प्रकृति के प्रति, प्रकृति के साथ जो आश्रमवासी थे या जो सामान्य जन था, उसका किस तरह से प्रेम रहता था, स्नेह होता था, प्रकृति प्रेम दर्शाता है। अब कोकिल रवम सूचयित्वा, जब शकुंतला आश्रम का जो वातावरण है उसके विषय में भी इस पाठ में आया है। कोकिल रवम सूचयित्वा, जो महर्षि कण्व हैं वो कोकिल रव, कोकिल अर्थात कोयल जो होती है उसकी जो मीठी ध्वनि है उसको सुनकर, उसकी तरफ इंगित करके वो शकुंतला को कहते हैं कण्व, कोकिल स्वरेण वृक्षई अनुमति ही प्रदत्ता, किस तरह से प्रकृति से जोड़ते हुए वो विषय का विवेचन करते हुए बोलते हैं कि कोकिल स्वरेण वृक्षई अनुमति ही प्रदत्ता, कि वृक्षों के द्वारा कोकिल स्वर में, कोयल का जो मीठी ध्वनि है, मृदु जो ध्वनि है, उसके माध्यम से वृक्षों ने आपको अनुमति दे दी है, प्रदान कर दी है। अब जो शकुंतला है वो कहती है, आश्रम पदम परित्यजंत्यः मे चरणौ दुखेन पुरतः प्रवर्तेते, कि आश्रम पद को छोड़ती हुई जैसे ही मैं आश्रम पद से आश्रम के इस आश्रम से बाहर इस आश्रम को छोड़ते हुए बाहर जाने का मेरे चरण जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो दुखेन पुरतः प्रवर्तेते, कि दोनों चरण हैं मेरे जो पैर हैं कदम जो हैं वो आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे बढ़ रहे हैं, अर्थात आगे की ओर ना जा करके पीछे की तरफ खींच रहे हैं। अब जो शकुंतला की जो सखियां हैं प्रियंवदा, सखी प्रियंवदा कहती है, न केवलम तपोवन विरह कातरा सखी एव त्वया उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्य अपि तावत् समवस्था दृश्यते। जब शकुंतला कहती है कि मेरे कदम पीछे की तरफ खींच रहे हैं तो प्रियंवदा बोलती है कि यह स्थिति केवल आपकी ही नहीं है, न केवलम तपोवन विरह कातरा सखी एव, कि केवल आपकी जो सखियां हैं वो ही आपके दुख से दुखी नहीं है। त्वया उपस्थित वियोग से, आपके द्वारा जो ये प्रदत्त वियोग है, ये पूरा जो तपोवन है वो उसकी अवस्था भी ऐसी है, अर्थात सब के सब जो है वो कष्ट में हैं, सब के सब जो है विरह में हैं, सब के सब वियोग के दुख से दुखी हैं। प्रियंवदा कहती है, पश्य उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्रा मुचयन्ति अश्रूणी वलताः। यहां कहा है उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः, जो मृग्य हैं, जो मृग हैं, जो वहां प्राणी हैं, वो क्या कर रहे हैं, उद्गलित दर्भ कवला, उन्होंने जो दर्भ जो है जो घास है उसको खाना छोड़ दिया है, ऐसे उद्गलित दर्भ कबलाहा, घास खाना छोड़ दिया है जिन्होंने, ऐसे जो मृग्य हैं हरिण हैं, अर्थात हरिणों ने शकुंतला के वियोग से घास खाना छोड़ दिया है। परित्यक्त नर्तना मयूराहा, और जो मयूर हैं मोर हैं उन्होंने क्या क्या कर दिया, परित्यक्त नर्तना, उन्होंने नाचना अर्थात खुशी मनाना छोड़ दिया है, कष्ट में वो भी वियोग में वो भी उन्होंने नृत्य करना छोड़ दिया है। अपसृत पांडु पत्रा, और जो 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 ये हैं बेल हैं लताएं हैं उन्होंने अपने पत्तों को छोड़ दिया है, पीले पत्तों को छोड़ दिया है, और कैसे वो जो छोड़ती हुई जैसे बेल जो है लता जो है उसके पत्ते से गिरता हुआ जो पत्ता है वो इस प्रकार में ऐसा एहसास करवा रहा है, इस तरह का अनुभव हो रहा है जैसे मुंचंती अश्रुणी व लता, कि जैसे कोई लता जो है वो आंसू गिरा रही है, उससे आंसू गिर रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। यह कालिदास का प्रकृति वर्णन जो है वो हमें पता लगता है कि महाकवि कालिदास ने किस तरह से प्रकृति का वर्णन किया है, कि अपसृत पांडु पत्रा मुंचंती अश्रुणी वलता, कि लता से गिरता हुआ जो पांडु पत्र है, जो पीले पीले जो पत्ते हैं वो इस तरह से ऐसा अनुभव करा रहे हैं जैसे आंसुओं की अश्रुओं की धार आंखों से गिर रही हो, नेत्रों से अश्रु धारा बह रही हो। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि प्रकृति जो प्रेम है, प्रकृति के प्रति हमारा जो भाव है वो अति प्राचीन काल से ही कैसा रहा है। इसके पश्चात शकुंतला कहती हैं, तात लता भगिनी वन ज्योत्सनाम आमंत्रयिष्य, कि मैं लता भगिनी जो वन ज्योत्सना है उसको आमंत्रित करती हूं। वन ज्योत्सने प्रत्यालिंग माम शाखा बाहू भी, वो वन ज्योत्सना को कहती हैं कि आप मुझे आलिंगन करो, शाखा बाहू भी अपनी शाखा रूपी बाहुओं के द्वारा। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तनी भविष्यामि, कि आज से मैं दूर परिवर्तनी भविष्यामि, मैं दूर रहने वाली दूर देश परदेश निवासिनी हो जाऊंगी, दूर देश में रहने वाली हो जाऊंगी। हला अनुसूये, वो अनुसूया प्रियंवदा और अनुसूया जो उन सखियां थी वो अपनी मित्र जो सखी जो अनुसूया है उनको कहती हैं, एषा द्वयोर युवयोः ननु हस्ते निक्षिप्ता, कि इसको मैंने आप दोनों के हाथों में निक्षिप्त अर्थात आप दोनों के को सौंप दिया है, निक्षिप्त कर दिया है, आपको सौंप दिया है। तभी सखियां बोलती हैं, अयम जनह कस्य हस्ते समर्पितः, कि ये तो ठीक है कि वन ज्योत्सना को तो आपने हमारे हमें सौंप दिया है, लेकिन यह किसको समर्पित कर दिया। कण्व कहते हैं, अनुसूये अलम रुदित्वा, जब जो अनुसूया और शकुंतल प्रियंवदा वो दुख से रोने लगती हैं, तो कण्व कहता है, महर्षि कण्व कहते हैं कि अनुसूये अलम रुदित्वा ननु भवतिभ्याम एव स्त्री कर्तव्या शकुंतला, कि आपको ही इसको शकुंतला को धैर्य देना है, स्त्री कर्तव्या, कि जब आप उसको यहां से विदा करते हुए प्रस्थान करते हुए शकुंतला में जब आप इस तरह से रोने लगेंगे तो शकुंतला को कौन धैर्य धारण करवाएगा। अब शकुंतला जो है ऐसा सुनकर वो गति भंगम रूपयित्वा वो ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, आत्मगतम, और अंदर ही अंदर अपने मन में सोचती हैं, कोनु खलवेश में वस्त्रे सज्जते, कि कौन है जो मेरे वस्त्रों को वापस खींच रहा है, लटक रहा है, सज्जते अर्थात जकड़ रहा है, वस्त्र को पकड़ लेना। तो महर्षि कर्ण कहते हैं, हे शकुंतले अयम ते पुत्र इव वर्धित मृग, कि ये जो पुत्र के समान जिसको तुमने बड़ा किया है ऐसा जो ये मृग है ये आपके वस्त्रों को जकड़ रहा है, पकड़ रहा है, अर्थात वो मृग भी शकुंतला को आश्रम से प्रस्थान कराने के में वो भी चाहता है कि शकुंतला जो है वो प्रस्थान ना करे। शकुंतला उसको समझाते हुए कहती हैं, वत्स इदानी मया वीरहितम त्वाम तातः चिंतयिष्यति निर्वतस्व तावत, कि आपको मेरे अनुपस्थिति में जो तात हैं महर्षि कण्व हैं वो आपकी चिंता करेंगे, आपका पालन लालन पालन करेंगे। निर्वतस्व तावत, मुझे प्लीज एक बार छोड़ दीजिए। रुदति प्रस्थानम करोति, और रोते हुए शकुंतला जो है वो वहां से प्रस्थान करती है। तो शिक्षार्थियों इसके बाद जो तृतीय एकांश है वो है, अब कण में जो है वो कहते हैं, वत्से अलम रुदितेन, कि आप रोइये नहीं, स्थिरा भव, आप स्थिर हो जाइए। इतः पंथानम आलोकय, कि यहां से आप इस पंथान रस्ते को मार्ग को संस्कृत में पंथा कहते हैं, पंथानम आलोकय अस्मिन नतोन्नत मार्गे ते पदानी विष्मी भवंती, कि इस नत उन्नत अर्थात टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा इस जो मार्ग है इस पर आपके जो पैर हैं वो विषम हो सकते हैं, अर्थात जो मार्ग है उसको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए ऐसा। तो शारंगरव जो हैं वो बोलते हैं, भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते, यह हमारी संस्कृति की एक परंपरा है कि ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते, कि ओदक तक अर्थात जहां पानी, बचपन में हमने भी देखा है कि जब पति गृह के लिए जो बहनें जाती हैं तो उनको गांव में जो माताएं हैं वो जल अपने साथ लेकर जाती हैं, या गांव के बाहर जो कूप होता था उस समय वहां तक उनको छोड़ने के लिए वो जाती थी, तो और उसके बाद वहां से वो पानी देकर उनको वापस आती थी। तो ये एक परंपरा आज भी गांव में विद्यमान है और उसी परंपरा को यहाँ लिखा हुआ है, ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते, कि पानी तक जहां जल मिलता है वहां तक जो स्निग्ध व्यक्ति है, जो प्रिय व्यक्ति है, वो अनुगंतव्य इति श्रूयते, उनको उनका अनुगमन करना चाहिए ऐसा सुना जाता है। तद इदम सरस्वती तीरम, इसलिए ये जो सरस्वती का जो तीर है, नदी का जो तीर है, अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हति भवान, कि यहाँ संदेश देकर यहाँ इनको छोड़कर आप जो है वापस जा सकते हैं, यहाँ संदेश देकर आप उनको छोड़कर जा सकते हैं। तो कण्व अब संदेश देते हैं, क्या संदेश देते हैं, ये विचारणीय है, अत्यंत विचारणीय है, ये सभी के लिए विचारणीय ही नहीं अपितु अनुकरणीय है। कण्व कहते हैं, शकुंतले त्वम गुरुन शुश्रूषस्व, कि आप गुरुओं की शुश्रूषा करें, सेवा करें, परिजनेषु बाहुल्येन उदारा भव, और परिजनों के प्रति बहुलता से उदारवान होवें, समृद्धिषु अगर्विता भव, और जो समृद्धियां हैं अर्थात जो जो धन दौलत वैभव है उसमें आपको अगर्विता भव, अर्थात उसमें आप अगर्वित होवें, निरभिमानी होवें, अर्थात आपको अभिमान ना रहे, अभिमान रहित आप हों। एवं आचरन्त्यः युवतयः गृहिणी पदम यान्ति, इस प्रकार के आचरण को प्राप्त करती हुई युवतियां जो गृहिणी का जो पद है उसको प्राप्त करती हैं। गृहिणी का जो उच्च पद है, घर की स्वामिनी का जो उच्च पद है उसको प्राप्त करती हैं। ये आज भी अनुकरणीय है कि बड़ों की गुरुन शुश्रूषस्व, अर्थात गुरुओं की सेवा करना चाहिए। परिजनेषु बाहुल्येन उदारा भव, और अपने जो परिजन हैं, जो सगे संबंधी है उनके प्रति उदार भाव रखना है, और समृद्धि जो है आपका जो वैभव है उसके प्रति आपको अगर्वित होना है, निरभिमानी होना है, अभाव रहित रहना है। इस प्रकार का आचरण करती हुई युवतियां ही गृहिणी इस पद को प्राप्त करती हैं। अब गौतमी कहती हैं, जाते एतत् खलु सर्वम अवधारय, कि अब माँ जो गौतमी है वो शकुंतला को समझाते हुए कहती हैं कि ये सब आपको धारण करना है, पालन करना है। शकुंतला, तात कथम उन्मूलिता चंदन लतैव देशांतरे जीवितुम धारयिष्यामि पादयोः पतति। शकुंतला पुनः दुख से महर्षि कण्व को कहती हैं कि तात कथम उन्मूलिता चंदन लतैव, कि जैसे चंदन की लता को जड़ से उन्मूलित कर दिया है, उखाड़ दिया है, ऐसी ऐसी ऐसा दिखते हुई मैं कैसे जो है देशांतर में अपना जीवन धारण करूंगी। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, आज के पाठ के माध्यम से हमने संस्कृत के विषय में जाना, कालिदास के विषय में जाना, और विशेषतः हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में प्रकृति प्रेम, और किस तरह से कालिदास ने प्रकृति प्रेम को एक व्यवहार के माध्यम से, और प्रकृति के साथ हमारा किस तरह का संबंध हुआ, ये इस पाठ के माध्यम से हमें द्योतित होता है। आशा करता हूँ कि इस पाठ के माध्यम से, आज के इस परिचर्चा के माध्यम से आपको हमारे शास्त्रों के विषय में, संस्कृति के विषय में, प्रकृति प्रेम के विषय में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसी आशा करता हूँ।